वेद शिवांशा के साथ हॉस्पिटल में था। रात को फिर से पेट दर्द के साथ ही शिवांशा की नींद खुल गई थी। उसे उल्टियां हो रही थीं। शिवांशा की तबीयत ही खराब नहीं थी, वो मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसे एक बार फिर अंकुश से जुड़े बुरे सपने परेशान करने लगे थे। वेद के पूछने पर शिवांशा ने एक बार तो उसे इस बारे में बता दिया था, लेकिन अगली बार उसे बताते हुए अजीब लग रहा था। पहले वो जो भी सपने में देखती या महसूस करती वो उसके साथ सच में हुआ था, पर इस बार उसने जो कुछ भी देखा ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। वेद के समझाने के बावजूद शिवांशा डर के मारे सो नहीं रही थी, तो उसे लगा कि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। वेद वहां से जाने लगा तो शिवांशा ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि वो उसके पास होने पर सेफ महसूस करती है। वेद शिवांशा से चाहे कितनी भी नफरत क्यों न कर ले, लेकिन उसने कभी उसे गलत तरीके से टच नहीं किया था। शिवांशा भी उसकी इस नफरत और गुस्से का कारण समझती थी। वहीं शिवांशा के रोकने पर वेद उसकी तरफ पलटा और बोला, अगर मेरे साथ होने पर तुम कंफर्टेबल फील करती हो तो मुझे बताओ किस बात का डर है तुम्हें? अंकुश यहाँ नहीं है बच्चा, और ना ही वो आ पाएगा। तुम्हें अपने अतीत से बाहर निकलना होगा। इसमें मैं या कोई और तभी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं जब तुम हमें तकलीफ बताओगी। वेद काफी प्यार से शिवांशा को समझा रहा था। शिवांशा ने नम आंखों से वेद की तरफ देखा और कहा, मैंने एक बार फिर वही सब देखा, उससे भी ज्यादा। मैं बेहोश हो गई थी, वो मेरे साथ रेप। बोलते हुए शिवांशा रुक गई और उसकी गर्दन झुक गई थी। वहीं वेद ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन बोला, काश मैं तुम्हें कह सकता कि ये बस तुम्हारा एक बुरा सपना है। तुमने मुझ पर यकीन किया है तो मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। वेद के कुछ न बोलने पर शिवांशा थोड़ी परेशान हो गई थी। उसे यही लग रहा था कि वेद न जाने उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। एक तरफ तो वो अंकुश के नाम तक से डरती है, और दूसरी तरफ उसे ऐसे सपने आते हैं जहां अंकुश उसके पास आ रहा था। शिवांशा ने वेद को बता तो दिया था, लेकिन अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने वेद की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरी वजह से आप अपनी नींद खराब मत कीजिए। आपको काम पर भी जाना होता है, मेरा क्या है? मैं तो दिन भर घर पर रहती हूँ, कभी भी सो सकती हूँ, और मुझे इन सब की आदत है। एक दो दिन में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वेद ने शिवांशा के चेहरे की तरफ देखा, जो मासूमियत से उसे देखते हुए बहाने बना रही थी ताकि वो चैन से सो सके। वेद ने गहरी सांस ली और शिवांशा से बोला, चलो थोड़ा साइड हटो और मुझे जगह दो। हैं, क्या? शिवांशा ने जल्दी से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वेद क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेद ने इस बार बिना कुछ कहे शिवांशा को अपने हाथ के इशारे से बेड पर थोड़ा साइड खिसकने को कहा। वैसे भी वो बेड उतना बड़ा था कि दो लोग पास में सो सके। वेद के कहते ही शिवांशा तुरंत दूसरी तरफ हो गई। उसने देखा वेद बेड पर आकर बैठ रहा था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वेद, जो उसे छूना तक नहीं चाहता था, वो उसके इतने पास आकर बैठ रहा था। वेद वहां कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया और उसने तकिया अपनी गोद में रखा। उसने बिना कुछ बोले शिवांशा को अपनी गोद में लेटने का इशारा किया। शिवांशा का तो हैरानी से मुंह खुला रह गया था। उसके चेहरे के भावों को समझते हुए वेद ने आईज रोल की और बोला, तुमने कहा कि तुम मेरे पास होने पर कंफर्टेबल फील करती हो और तुम्हें डर नहीं लगता है, तो पूरी रात मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम आराम से सो सकती हो। शिवांशा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो उसे यही कहना चाहती थी कि अगर वेद उसके इतने करीब रहा तो सच में उसे नींद नहीं आने वाली थी। उसके दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी थी। तुम्हें सोना है या फिर मैं उठकर जाऊं? वेद ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा, क्योंकि शिवांशा लेटने के बजाय अभी भी उसके पास बैठी उसे खोई हुई नजरों से देख रही थी। आज से पहले किसी ने उसकी इस तरह परवाह नहीं की थी। शिवांशा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सिर वेद की गोद में रखे तकिए पर रख दिया था। वेद बिल्कुल हल्के हाथों से उसके बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उसके लिए ये चीज नहीं थी, लेकिन शिवांशा ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद तो जरूर कर रखी थी, लेकिन दूसरा हाथ उसका अपने सीने पर लगा हुआ था कि कहीं गलती से भी वेद उसके दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को महसूस न कर ले। शिवांशा ने मन ही मन कहा, ऐसे तो इशारों इशारों में समझाते रहते हैं कि इन्हें लेकर कुछ भी गलत नहीं सोचना है, फिर खुद ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद चाहकर भी मेरा दिल काबू में नहीं रह पाता है। समझ नहीं आ रहा, आप जैसे इंसान से अभी तक किसी को प्यार क्यों नहीं हुआ? क्या उन्हें आपका सख्त चेहरा और गुस्सा ही दिखाई देता है? किसी ने इतने प्यारे दिल को देखने की कोशिश क्यों नहीं की? वेद के बारे में सोचते हुए शिवांशा को हर उस लम्हे का ख्याल आ रहा था जब वेद ने अपनी नफरत और बदले को भूलकर शिवांशा की दिल से परवाह की थी, चाहे वो उसे अंकुश से बचाना हो या रोहन के लिए स्टैंड लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाना हो। कल शाम भी उसने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थीं जिसके बाद वेद की जगह कोई और होता तो शिवांशा से बेइंतहा नफरत करने लगता। गुस्सा तो वेद भी हुआ था, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हुई तो वो सब कुछ भूलकर आज उसे सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। अपने ख्यालों में खोई हुई शिवांशा नींद के आगोश में जा चुकी थी, तो वहीं उसकी ठहरी हुई सांसें देखकर वेद ने भी हाथ रोक लिया था। वो उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे की तरफ देख रहा था। शिवांशा को देखते हुए अचानक वेद को अक्षत की याद आ गई। जब उनके पेरेंट्स की मौत हुई थी तब उनकी लाश को सबसे पहले अक्षत ने देखा था। वो ठीक से सो नहीं पाता था और नींद से जागकर डरकर रोने लगता था। तब वेद इसी तरह उसका सिर अपने गोद में रखकर सहलाते हुए उसे सुलाता था। शिवांशा को नींद आने के बाद वेद ने उसका सिर उठाकर नीचे बिस्तर पर लेटना चाहा, लेकिन शिवांशा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था। उसके ऐसा करने पर वेद को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन शिवांशा नींद में थी तो वो चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। लगता है अब मुझे सृष्टि को सब कुछ बताकर उसकी हेल्प लेनी ही होगी, वरना तुम ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। अब तक मैं तुम्हारी वजह से उलझा हुआ था तो मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर अजावत फैमिली देवराज ठाकुर की फैमिली को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? देवराज ने आज तक उस शख्स का नाम नहीं बताया जिसके कहने पर उसने माँ बाप की जान ली थी। उसने यही गवाही दी थी कि ये उसने अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए किया था। ये सब कुछ जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। शिवांशा ने कहा था कि उसने शादी के दिन देवराज को कोई लेटर नहीं लिखा था, पहले वो लेटर तो बाद में उन तस्वीरों का आना। क्या कोई ऐसा है जो चाहता था कि मैं शिवांशा के बारे में जानूं और उसे सजा दूं? राजावत फैमिली ऐसा नहीं करेगी। उन्होंने तो खुद शिवांशा को मारने के लिए अंकुश को भेजा था। आखिर कौन है वो तीसरा शख्स जो इतने सालों से हमारी जिंदगी के साथ खेल रहा है? वेद के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। जब से भरत और शोभा की मौत हुई थी उसने सच पता लगाने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन उस मामले का मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आया। उसने अपने आगे इतने मोहरे अपनी सुरक्षा के लिए खड़े कर रखे थे कि वेद जब भी कुछ पता लगाने की कोशिश करता आखिरी कड़ी हमेशा देवराज के पास जाकर ही खुलती थी। देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा था जो वो शिवांशा का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल कर सके। अपनी कश्मकश में खोए हुए वेद को भी नींद आ रही थी।
सुबह लगभग 8 बजे के करीब अक्षत और नव्यांशी शिवांशा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उन्होंने देखा कि बेड पर शिवांशा और वेद सोए हुए थे। शिवांशा का सिर अभी भी वेद की गोद में था और वेद पीछे की तरफ झुककर सोया हुआ था, हालांकि उसका हाथ अभी भी शिवांशा के बालों में ही था। रात को नींद में शिवांशा एक दो बार दर्द से कराह जरूर रही थी, लेकिन वेद ने तुरंत सहलाते हुए वापस प्यार से सुला दिया था। उन्हें इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर अक्षत और नव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अक्षत ने नव्यांशी की तरफ देखकर कहा, लगता है कल रात कोई किसी को बहुत ही प्यार से सुला रहा था। ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में, एक फोटो तो बनती है। अक्षत ने जैसे ही अपना मोबाइल निकालना चाहा नव्यांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। ये बहुत गलत है, एक तो तुम उनके प्राइवेट मोमेंट्स में इंटरप्ट कर रहे हो, ऊपर से उनकी फोटो भी क्लिक कर रहे हो, नव्यांशी ने उसे डांटते हुए कहा। उसके ऐसा करने पर अक्षत का मुंह बन गया था। वो गहरी सांस लेकर बोला, हमें अपनी आदत बदलनी होगी। हमेशा से भैया के कमरे में बिना नॉक किए हुए जाते थे क्योंकि वो अकेले रहते थे, अब भाभी आ गई हैं तो हमें उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऊपर से हम भाई से छोटे भी हैं तो वो हमारे सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं। चलो बाहर चलते हैं, डॉक्टर से भाभी के बारे में पूछकर चले जाएंगे, नव्यांशी ने जवाब दिया और वो तुरंत अक्षत का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई थी। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर से बात करने के लिए उनके केबिन में चले गए थे। नव्यांशी ने अक्षत को तो शिवांशा और वेद की इस मोमेंट में फ़ोटो खींचने से रोक लिया था, लेकिन कोई ऐसा था जो अभी भी छुपकर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। वेद और शिवांशा के इस तरह पर्सनल फेस की फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसने वो तस्वीर तुरंत किसी को भेज दी थी। कोई इंसान ऐसा था जो अभी भी उनके हर एक लम्हे पर नज़र रख रहा था। तस्वीरों को देखने के बाद उस आदमी ने गुस्से में अपना हाथ दीवार के मारा और बोला, इतना सब कुछ कर दिया उसके बावजूद वेद सिंह चौहान इस लड़की के करीब कैसे आ सकता है? क्या वो सबूत यकीन दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थे कि उस लड़की की उसके माँ बाप की मौत में इन्वॉल्वमेंट थी? तेजिंदर राजावत, तुम्हें एक काम दिया गया था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। उस आदमी ने तुरंत गुस्से में तेजिंदर को कॉल किया और उस पर चिल्लाते हुए कहा, एक काम दिया था तुमसे, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़की की पुरानी यादें मिटा दो, जब तक वो हमारे काम आ रही है तब तक उसे इतना डरा धमका कर कमज़ोर कर दो कि वो चाहकर भी सच को याद ना कर सके या हमारे खिलाफ कोई स्टैंड ना ले सके। लेकिन वो लड़की वेद सिंह चौहान तक पहुंच गई है, वो उसके दिल में जगह बना रही है। अगर गलती से भी उस लड़की को कुछ याद आ गया और मेरा नाम बीच में आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तेजिंदर ने हड़बड़ाते हुए सफाई देने की कोशिश की। सामने कॉल पर मौजूद शख्स ने उसे सफाई देने का मौका नहीं दिया। वो गुस्से में बोला, हाँ तुम्हारी कोशिश मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है, तभी आज वो लड़की हॉस्पिटल बेड पर वेद सिंह चौहान की गोद में सर रखकर प्यार से सो रही है। जिस इंसान को अपने हाथों से उस लड़की को मार देना चाहिए था वो हाथ उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिलहाल अंकुश के मामले में उलझा हुआ था, तेजिंदर बोला। उसे लगा कि अंकुश का नाम लेने पर शायद वो आदमी थोड़ा कन्विंस हो जाए, लेकिन उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया था। तेजिंदर भले ही उसके सामने दबी आवाज में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही कॉल कट हुआ वो गुस्से में जोर से चिल्लाया। उसके पास में लीला बैठी हुई थी। तुम्हारे बेटे और तुम्हें एक काम दिया था, उस लड़की को इतना टॉर्चर करना था कि वो अपनी पुरानी यादों को भूल जाए और हमारी दहशत में रहे, लेकिन क्या किया तुम लोगों ने, उसे वेद सिंह चौहान के पास पहुंचा दिया। तेजिंदर अपना गुस्सा लीला और अंकुश पर उतार रहा था। अंकुश पास में नहीं था लेकिन लीला जरूर उसकी बातों को सुन रही थी। हाँ तो मैंने अपनी तरफ से लड़की को मारने पीटने में कोई कमी नहीं रखी, अंकुश ने भी लड़की को, लीला जवाब दे रही थी। तभी तेजिंदर ने उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से में कहा, अंकुश का नाम भी मत लो, अगर वो मेरा इकलौता बेटा नहीं होता तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लेता। उस लड़की को मोलेस्ट करने तक ठीक था, लेकिन किसने कहा था कि उसे फार्म हाउस पर जाकर अपनी हवस पूरी करने को। शुक्र मनाओ जो हम वक्त पर पहुंच गए थे, वरना वो उस लड़की की जान ले लेता और सारा मामला हमारे ऊपर आता। तेजिंदर के इतना कहने पर भी लीला पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अलग अलग गहनों को ट्राई करके देख रही थी। तेजिंदर और लीला अच्छे से जानते थे कि सालों पहले अंकुश ने शिवांशा के साथ क्या किया था, पर उन्हें कुछ भी करके शिवांशा के दिमाग से पुरानी यादें मिटाकर उसके दिमाग में बुरी यादें भरनी थीं, ताकि वो कभी उनसे बाहर ना निकल पाए। उनका हमेशा से एक ही मकसद था कि शिवांशा गलती से भी वेद के पास ना पहुंच पाए। आज शिवांशा वेद के साथ में थी और जिस तरह से वेद उसकी केयर कर रहा था, उससे साफ था कि जल्दी वो अपनी उन बुरी यादों से निजात पा लेगी।